پانی کیرا بلبلا اسمانس کی جات دیکھت ہی چھپ جائے گا جو تارا پربھات. جو پربھات کا تارا چھپتا ہے ایسے ہی من چھپ جاتا ہے. یہ تو کوئی بس کی بات نہیں ہوتی ہے. اس لیے کبیرہ گرو نہ کیجئے کال گہے کر کیش نہ جانے کت مارہی کیا گھر کیا پردیش. کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے. تو یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو شریر ہے اس میں پون روپی پنچھی ہے, کب اڑ جائے کیا پتہ ہے. اس لیے پانچ تتو کا پتلا تامے پنچھی پون رہے تو ہے آشرج, اڑے تو آشرج کون. یہ کبیر داس نے کہا ہے یہ پانچ تتو کا پتلا ہے, اس میں پنچھی کون سا ہے, پون کا, ہوا کا, سانس کا پنچھی ہے. یہ رہتا کیسے ہے آشرج لوگ کرتے ہیں, رہتا کیسے ہے, اڑنے کا تو کیا پتا کس وقت بھی اڑ جائے. تو مہاراج نے بھی کہا ہے کہ مٹی میں مل جائے گا مہما مان مہان, پھر چار دنوں کی چاندنی پھر انت اندھیرا جان. یہ کس بات کے لیے تو ایرشا کرتا ہے, کس بات کے لیے دویش کرتا ہے, کس بات کے لیے تو سڑتا کرتا ہے, کیونکہ سنسار میں رہنا تو ہے نہیں, جانا ہے. جب جانا ہے تو مہاراج نے کہا ہے کہ کریے میتری سرو سے ہت چنتن اپکار, سجن تارک سرو سے بن سیوک سوکار. چار دن کی زندگی میں یہ کما کے لے جائے گا تو ٹھیک ہے, کیونکہ سب کے ساتھ پریم کے ساتھ محبت کے ساتھ سیوا کے ساتھ آدر بھاو کے ساتھ رہ لے پھر تو تیری ساکھ رہ جائے گی. نئی ساکھ رہ جائے گی تو دنیا میں ٹکنے والا کوئی بھی نہیں ہے. مہاراج نے کہا ہے راجے رانے اتی بلی شور ویر بھوپال مہا مانے سسدھ جن پڑے کال کے گال. جتنے کتنے راجے ہو چکے کوئی نہیں رہا, کتنے رانے ہو چکے کوئی نہیں رہا, کتنے اتی بلی سنسار میں ہو چکے کوئی نہیں رہا, کتنے شورویر ہو چلے کوئی نہیں رہا, دھرتیوں کے بھوپال ساری دھرتی کے مالک جو ہو چلے کوئی نہیں رہا. مہامان جن کو دنیا مانتی تھی, جن کے دنیا چرنوں کی دھوڑی اٹھا کے مستک پر لگاتی تھی وہ نہیں رہے. سسدھ جو سدھ مانے جاتے تھے, جن کی وانی نت سب سدھ ہوتے تھے پڑے کال کے گال. ہر ایک آدمی کال کے گال میں پڑا ہے, نہ تو شورویر رہا, نہ بہادر رہا, نہ دھرتی کا مالک رہا, نہ راجا رہا, نہ رانا رہا, نہ کوئی مہامان رہے, نہ سدھ رہے, نہ اوتار رہے. تو اس واسطے مہاراج نے کہا ہے کہ تو کس کے لیے اپنے اتنے گھمنڈ کو کرتا ہے. مہاراج نے کہا کریے میتری اپنے مان گھمنڈ میں انڈ منڈ مت بول, ڈر جا راجا رام سے جیب نہ لمبی کھول. تو لمبی جیب کیوں کھولتا ہے, تیرے کو ہمیشہ سمجھنا چاہیے کہ تیرے اوپر بھی کوئی بیٹھا ہے جو تیرے سے شکتی شالی ہے, تیرے سے اوپر وہ حکومت کرنے والا ہے, اس لیے تو انڈ منڈ کیوں بولتا ہے. مہاراج نے کہا ہے کہ دیکھے پر سمردھی جب من میں برا نہ مان, کیے کرم کا پھل کہا داتا ہے بھگوان. جب کسی کی ترقی دیکھ انتی دیکھ برا کیوں مانتا ہے, دینے والا تو بھگوان ہے وہ دیتا ہے. تیرے سڑنے کڑنے سے اس کا تو کوئی نقصان نہیں ہوگا پر تیرا نقصان ہوگا ضرور سمجھ لے. کیوں انشٹ چنتن اور کا کرے گنوں کا ناش, بڑھ کر ایرشا آسری ہرے وویک وکاشی. چھ چیزیں اس آدمی کی نشٹ ہو جاتی ہیں جو آدمی دوسرے کا برا سوچتا ہے, جو دوسرے کا برا سوچتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے. مہاراج نے کہا ہے گنوں کا ناش, دھیرے دھیرے اس کے گن گھٹتے جاتے ہیں. جس آدمی کے اندر دوسرے کی برائی کے سنکلپ اٹھتے ہیں, ایک تو اس کے گن کو ناش ہوتا ہے. بڑھ کر ایرشا آسری ہرے وویک وکاش, ایرشا کی جو آسری ہے راکشنی بڑھ کے ہرے وویک وکاش, اس کے بدھی کو بھی, اس کے بڑھنے کو بھی, اس کے دھن کو بھی, سمپت کو بھی, یش کو بھی, سب کو یہ ستم کر دیتی ہے جو آدمی کی ایرشا اور پشنتا ہے. اس لیے مہاراج نے کہا ہے کہ پرم پربھو کو پوجیے جو ہے سرو نواس, होकर सेवक दास जन सबके रहिए पास। खिदमत कर ले, खिदमत कर ले, चार दिन जिंदगी के हैं, ना तो सदा चार पूर्णमासी रहेगी और ना सदा बसंत रहेगी। चार दिन की जिंदगी में एक एक श्वास तेरा सेवा में, सिमरन में, सही में लग जाए, यही परमेश्वर से आशीर्वाद मांगना होता है। बाकी तो मट्टी में मिल जाएगा। मैं मां मान महान, तेरी चार दिनों की चांदनी, फिर अंत तेरा जाना, अंत तो तेरा जाना ही जाना है। जाने से पहले कुछ कर ले, कुछ कर ले, कल करंतु आज कर, आज करंतु अब, क्षण में परलय होता है फिर करेगा कब, कब करेगा फिर, तू आज ही कर ले जो कुछ करना है। यही संतों ने कहा है कि जो कल की बात कहता है, वहाँ से ये मिसाल बनी हुई है कि कल नाम काल का, जो कल का नाम है वो काल का नाम है। आज अपने हाथ का है, कल तो काल के हाथ में होता है, इसलिए कर लिया सो काम और जप लिया सो राम। परमेश्वर की कृपा रख। यश गायन अपना नहीं, सुनते सज्जन संत, ज्ञानी ध्यानी वीरजन और मीर मति में। सात आदमी अपने कानों से अपनी बड़ाई नहीं सुनते हैं, कानों का ये पड़ा है, आँखों का ये पड़ा है कि आँखों का सही इस्तेमाल है, अच्छी पुस्तक का स्वाध्याय करना, संतों के, महापुरुषों के, माँ बाप के, बुजुर्गों के दर्शन करना, और नैनों में द्वेष नहीं लाना, नैनों में दूसरे के लिए प्यार रखना, आँखों से गंदी चीज़ें नहीं देखना, आँखों से गंदे रास्ते नहीं जाना, आँखों को गलत रास्ते पर ले जाना नहीं है, ये आँखों का इस्तेमाल है सही। नाम जपण को जीवादीनी, संत दर्श को अखी, एक एक सांस मोलक तेरा हाथ ना आवे लखी। तो ये आँखें जो हैं ये महापुरुषों के दर्शन करने के लिए और स्वाध्याय करने के लिए, दूसरे को सही रास्ते और मेहर की नज़र डालने के लिए ये आँखों का साधन है। कहते हैं कि जो आँखों का साधन कर लेता है तो उसको जिसके पर नज़र डालता है उसके जीवन में परिवर्तन आ जाता है। निगाह मर्द कामल से बदल जाती हैं तकदीरें, यदि विश्वास पक्का हो तो कट जाती हैं जंजीरें। जिसने आँखों की साधना की होती है उसकी दृष्टि पड़ने से ज़िंदगी बदलती है। ये आँखों का संयम हम लोगों ने पढ़ा, हाथों का संयम ये पढ़ा है कि किसी की रक्षा करना, सेवा करना, हाथों से परोपकार करना, हाथों से दान देना, हाथों से यज्ञ करना, भला करना, ये हाथों का महाराज ने कहा सही इस्तेमाल है। किसी से अन्याय करना, गलत काम करना, गलत हाथों से गलत सिलसिले करना, ये कानून हाथों का गलत इस्तेमाल है। पैरों का हम लोगों ने पढ़ा कि पैरों से परमेश्वर के दरबार में जाना, सत्संग में जाना, अच्छे स्थान पर जाना, वहाँ जाके अच्छे ढंग से बैठना, और पैरों से जो भी शुभ कर्म हो सके करना, ये तो पैरों का सही इस्तेमाल है, और गलत रास्ते जाना ये सब उसका गलत इस्तेमाल है। तो ये हम लोगों ने पढ़ा था कल कि ये इंद्रियों का संयम है, सही इस्तेमाल इंद्रियों का ये है। आज है आधार शुद्धि। आधार मतलब ये है कि आधे तो आत्मा है और शरीर उसका आधार है। हम लोग शरीर को तो सजाते हैं, सजाना चाहिए जब तक है, लेकिन वो शरीर निर्मल कब होता है, जब भीतर निर्मल होता है। भीतर गंदगी होती है तो फिर शरीर को साफ करने का उतना लाभ नहीं होता है, क्योंकि आदमी की जब वृत्तियां चंचल होती हैं, आदमी कहता है मेरी तो वृत्ति बड़ी ख़राब हो गई, वृत्ति चंचल हो गई, वृत्ति मेरी खराब हो गई, वृत्ति मेरी गलत रास्ते चली गई। तो वृत्ति तो अंदर है, बाहर तो नहीं है। शरीर तो चलता है भीतर की प्रेरणा से, भीतर जो कुछ कला हिलती है उसके मुताबिक शरीर चलता है। इसलिए कहा है कि तेरे को अपने शरीर को सही रास्ते पर चलाना है तो तेरे को भीतर की निर्मलता चाहिए, भीतर की वृत्तियां जो हैं उनको साफ करना चाहिए। तो आज उसका वर्णन है आधार शुद्धि। आधार मैंने शरीर, आधे मैंने आत्मा। तो आधार की शुद्धि अगर करनी है तो तेरे को भीतर की शुद्धि करनी चाहिए। निर्मल मन सो मोहे भावा, रामायण में आया है कि हे लक्ष्मण निर्मल मन सो मैं भावा और मुझे छल कपट नहीं भावा। छल कपट मेरे को पसंद नहीं है, निर्मल मन मेरे को पसंद है। महाराज ने भी कहा है, एक साधारण बात है, किसी गंदे कमरे में, जिस कमरे में गंदगी हो तो कोई मेहमान आप बुलाओ तो उस कमरे में वो साधारण मेहमान भी बैठना पसंद नहीं करता है। तो गंदे कमरे में जब साधारण मेहमान भी बैठना पसंद नहीं करता है तो तुम साधना में बैठो, भजन पाठ में बैठो और गंदे मन में भगवान को बुलाओ, कैसे बैठेंगे? वो नहीं बैठेंगे। भगवान को बुलाने के लिए वृत्ति को, मन को साफ रखिए, फिर भगवान को बुला के बिठाना होता है। इसको कहते हैं आधार शुद्धि, आदि शुद्धि। 162 है कि माना आधे आत्मा तन उसका आधार, भीतर की सुवृत्तियां सुधरे छोड़ विकार। तो सबसे बड़ी बात जो है कि भीतर की जो वृत्तियां हैं वो आदमी की निर्मल होनी चाहिए, उसमें विकार नहीं होना चाहिए। इसके लिए ही आदमी को साधना करनी चाहिए। क्यों? कि वृत्ति में जब शुद्ध हो, सुधरे तन आधार, आत्मज्ञान तुरंत हो और सुख भी बड़े अपार। तो महाराज ने कहा है कि वृत्ति में जब शुद्ध हो, जब वृत्तियां शुद्ध हों तब बात बनती है, क्योंकि टेढ़ेपन के साथ वृत्तियां नहीं चलती हैं। महाराज ने भी कहा है कि रुई कातते हो, तकला टेढ़ा हो तो टूट जाता है। ऐसे ही जब तक आदमी सीधी सरल वृत्ति नहीं रखता है तब तक शांति होती है। विनोबा जी ने कहा है कि सांप जो है वो टेढ़ा चलता है, लेकिन जब बिल में जाता है तो सीधा जाता है, टेढ़ापन छोड़ता तभी बिल में जाता है, बिल में टेढ़ापन नहीं रहता है। भगवान के पास जब जाना है तो वृत्ति में जब शुद्ध हो, वृत्तियों को निर्मल करना चाहिए। निर्वृत्तियों को निर्मल करना है, पापों के अंदर वृत्तियां जाती हों तो उनको रोकना है। ये करे तो आदमी को जल्दी भगवान का आशीर्वाद मिलता है। वृत्ति में जब शुद्ध हो, सुधरे तन आधार, आत्मज्ञान तुरंत हो, सुख भी बड़े अपार। तो कहते हैं आत्मज्ञान जल्दी हो जाता है, निर्मल वृत्ति होती है। सबसे पहले तो अपनी वृत्तियों को इनसे हटाना पड़ेगा, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार से ये वृत्तियां हट जाएं। हटते ही फिर आदमी को महाराज का तुरंत सुख ज्ञान होता है। इसलिए ये दूसरी बात कही है कि जिसने भजन करना है, पाठ करना है, जिसने परमेश्वर का दर्शन करना है, आशीर्वाद पाना है, पहली तो ये कहा है कि भीतर की सुवृत्तियाँ सुधरें छोड़ विकार, अपनी वृत्तियों को विकार से खाली करना चाहिए। इसलिए जब वो वृत्तियाँ निर्मल होनी शुरू हो जाएंगी, वृत्ति में जब शुद्ध हो, सुधरे तन आधार, आत्मज्ञान तुरंत हो, सुख भी बड़े अपार, तो शरीर भी निर्मल होगा और भगवान का दर्शन भी होगा। ये दूसरी बात कही है। तीसरी, साधक को, साधना करने वाले को क्या महसूस करना है? महाराज ने कहा है सकल जगत का आश्रय नारायण ओंकार, अंतर्यामी अनंत है, शांत ही सर्वाधार। वो त्रिलोकी नाथ है, त्रिलोकी उसके आश्रय पर खड़ी है। जो देवे सब जगत को अन्न पान सुप्राण, वही दाता मेरा हरि सुख का करे कल्याण। सारे जगत को जो धारण करने वाला है, मेरा भी मालिक वही है। ये आश्रय मन में हमेशा रखे कि वो मेरा मालिक मेरे सिर पर है, मेरा मालिक मेरे सिर पर है। शांत ही सर्वाधार, अंतर्यामी अनंत है। ये महाराज ने कहा है कि परमेश्वर है, सकल जगत का आश्रय है, अंतर्यामी अनंत है। तू अपने आप को कितना छिपा के रख ले वो सब जानता है। जैसे तिनके की ओट करके कोई आदमी सूरज से छिपने की कोशिश करे तो जैसे वो है, ऐसे ही आदमी समझता है कि मेरे को कोई नहीं देखता है। वो अंतर्यामी अनंत है, उसका कोई पारावार नहीं, कोई अंत नहीं है, अंतर्यामी है और शांत ही सर्वाधार। वो शांति देने वाला है और सबका मालिक है। ये भावना रख के आदमी को साधना में बैठना चाहिए। कौन सी? करे भावना भाव से, है हरि बहुत समीप, भीतर बाहर राजता लोक त्रय सब दीप। ये भावना रखे अपने मन में साधक, जो साधना करने वाला है, जिसने जीवन को सफल करना है, ये उसकी भावना होनी चाहिए। जब भी ध्यान में बैठे, जाप में बैठे, साधना करे, करे भावना भाव से, है हरि बहुत समीप, मेरे साथ ही, मेरे अंग संग है, मेरे साथ ही है, भीतर बाहर राजता लोक त्रय सब दीप, मेरे अंदर भी है, मेरे बाहर भी है। तू समझे कि बाहर का दिखावा अच्छा कर ले, भीतर तेरे पाप गुनाह हो, तो समझ ले भीतर भी परमात्मा भी है, बाहर भी परमात्मा है। ये समझ के तू अपने आप को ठीक कर ले। तो फिर महाराज ने कहा है कि इस बात को साधना तो करे, पर इसके लिए आदमी को संत की संगति जरूर चाहिए, उसका आशीर्वाद जरूर चाहिए। सुरीति उसकी समझिए, मिलकर योगी संत, भक्ति भाव से समझकर फिर करे काम एकांत, एकांत में बैठ के, संत के पास बैठ के फिर साधना करे। तो फिर महाराज ने कहा है कि ये साधना करे तो ये उसके लिए बहुत ही अच्छी बात है। ज्ञानी जन से सीखिए, गुरुजन से ये रीत, रहस्य मौन अभ्यास है, रखिए श्रद्धा प्रीत। श्रद्धा रख के, मौन रह के, एकांत रह के, कुछ दिन न्यारे रह के, तू इसको संत के पास रह के सीख ले, फिर तेरे ऊपर भगवान की बख्शिश होगी, रहमत बख्शेगी, परमेश्वर की कृपा होगी। पर अगली बात का भी ख्याल रखना है कि वर्णन करना कर्म का, कला मान की मान, भेद बात को खोलना उन्नति में है हान। अपनी कमाई का, तपस्या का, अपने भजन का, पाठ का, अपनी मस्ती का, आनंद का, सुख का, चैन का, जो वर्णन करना कर्म का, कला मान की मान, तू समझ ले अहंकार की बात है। तू अगर सीखने के लिए अधिकारी के सामने बात करता है वो तो सीखने की बात है, लेकिन किसी को अपनी बड़ाई करता है कि मैं इतने बजे जागता हूँ, इतना पाठ करता हूँ, मेरे को ये हो गया, मेरे को ये हो गया। महाराज ने कहा है कला मान की मान, वेद बात को खोलना उन्नति में है हान। ये तेरी रास्ते में तरक्की की रुकावट पड़ जाएगी। वर्णन अपने ध्यान का, विघ्न कहें गुणवान। जो विघ्न आते हैं आदमी की साधना में, उनमें एक ये भी विघ्न है कि वर्णन अपने ध्यान का, विघ्न कहें गुणवान, ये भी विघ्न आता है। क्यों? साधक का ये कर्म है, करे कमाई आप, कथन क्रिया का ना करे तज मन के संताप। साधक का कर्म है कमाई करे, खूब कमाई करे, खूब कमाई करे, पर अपनी कमाई का वर्णन ना करे, ये उसके लिए पूरा ध्यान है। क्यों? उपजे बीज सुगुप्त रहे, अंकुर बने स्वरूप, मोती हीरा गुप्त रहे, चपके सुंदर रूप।
हरे रामा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे,
हरे कृष्ण
Hare Krishna, Hare Krishna.
बोलो जाते श्री राम बोलो सुबह और शाम बोलो।